दीवा सब कुछ भूलकर यहाँ रक्षित से बात करने आई थी, लेकिन जब वो रक्षित के घर पहुंची तो उसने उसे अपनी दोस्त कनिष्का के साथ बिस्तर पर देखा। दीवा इस बात का ज्यादा सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी और चुपचाप ब्रेकअप करके वहां से जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने रक्षित और कनिष्का की बातें सुनी तो उससे रहा नहीं गया। वे उसे बेवकूफ बता रहे थे और कल रात उन्होंने ही प्लान बनाकर उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे। दीवा गुस्से में कमरे में गई। उसे देखकर उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। दीवा खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो रक्षित के सामने रोकर खुद को कमजोर साबित नहीं कर सकती थी। दीवा ने उन दोनों को देखकर सार्कास्टिकली सिर हिलाकर कहा, गलत समय पर आ गई ना मैं, डिस्टर्ब कर दिया होगा, लगे रहो, शर्म तो वैसे भी तुम दोनों के मुंह पर है नहीं। दीवा ने गुस्से में रक्षित को घूरा। सुबह वो प्यार करने के बड़े बड़े दावे कर रहा था और रात को वो किसी और के साथ बिस्तर पर था। दीवा को लगा कि उसकी बातें सुनकर रक्षित उसे सफाई देगा। रक्षित ने कनिष्का को अपने करीब खींचा और फिर भौहें उठाकर बोला, मुझे तुम्हें किसी तरह की सफाई नहीं देनी है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब जब तुमने हम दोनों को साथ पकड़ लिया है तो सच बता देता हूँ कि मैं कनिष्का से प्यार करता हूँ। तुम्हारा हो गया हो तो जा सकती हो यहाँ से। रक्षित के चेहरे पर अफसोस के कोई भाव नहीं थे। दीवा ने भी खुद को पूरा मजबूत कर रखा था। उसने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें क्यों लगा कि मुझे किसी तरह की सफाई की जरूरत है? मैं तो खुद यहाँ ब्रेकअप करने के लिए आई थी। याद है ना, सुबह भी मैंने तुम्हें कहा था कि अब हम साथ नहीं रहने वाले हैं। वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो, कनिष्का जैसी लड़कियां ही तुम्हें पसंद आ सकती हैं। दीवा की बात सुनकर कनिष्का गुस्से में बोली, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? मुझे जैसी लड़की, मुझ में क्या कमी है? कनिष्का भी दिखने में खूबसूरत थी। हल्का सांवला रंग, गहरी काली आंखें और कंधे को छूते बाल। उसका फिगर भी काफी अच्छा था। तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझी? तुम जैसी लड़की मतलब एहसान फरामोश लड़की। भूल गई कि तुम्हारे पास स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे? तब मेरे पापा ने तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हारी आगे तक की एजुकेशन पूरी करवाई और उसके बाद अपनी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब दी। जिस इंसान ने तुम्हें जिंदगी में सब कुछ दिया, उसी की बेटी के साथ तुमने ऐसा किया? दीवा ने गुस्से में जवाब दिया, तुम अमीर लोगों को लगता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तुम्हारे पापा ने जो पैसे दिए थे वो मैं पहले ही चुका चुकी हूँ, कनिष्का ने जवाब दिया। कनिष्का ने दीवा के प्यार को एहसान समझकर पल में छोटा दिखा दिया था। दीवा अपने बारे में तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने डैड के बारे में वो कुछ नहीं सुन सकती थी। दीवा गुस्से में उसके पास आई और जोर से थप्पड़ लगाकर बोली, आज तुम्हारी जगह कोई और होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने अपना बनने का दिखावा किया और फिर जिस तरह से धोखा दिया है उसके बाद ये छोटा सा थप्पड़ तो तुम डिजर्व करती हो। कनिष्का ने लाल आंखों से रक्षित की तरफ देखा। रक्षित ने कुछ नहीं पहना हुआ था। उसने पास रखा ब्लैंकेट अपनी कमर के नीचे लपेटा और दीवा के पास आकर बोला, आज के लिए इतना तमाशा काफी है दीवा गोयंका, मेरे घर से निकलो वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। तुम्हें घटिया इंसान हो रक्षित दीवान, तुमने मेरे साथ जो भी किया है उसका तुम्हें खामियाजा जरूर उठाना पड़ेगा, दीवा गुस्से में चिल्लाकर बोली। धमकियों का रक्षित पर कोई असर नहीं हुआ। वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम अच्छे से जानती हो कि अब तुम्हारी कोई औकात नहीं रही है। बेहतर होगा कि अपने घमंड को थोड़ा कम करो, क्योंकि ये हाई क्लास घमंड दिवालिया हुए लोगों पर सूट नहीं करता। रक्षित ने दीवा को पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने घर के बाहर कर दिया। रक्षित के घर से बाहर निकलकर दीवा सड़क पर पागलों की तरह चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में कई सवाल। दीवा ने अपने मन में कहा, रक्षित ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो उसने मुझे धोखा दिया? और किसी और के साथ उसने मुझे बेचने तक की प्लानिंग भी कर ली। दीवा को बहुत जोर से रोना आ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और खुद को गले लगाते हुए बोली, रो मत दीवा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ जो कुछ बुरे लोग तुम्हारी जिंदगी से चले गए। थोड़ी देर पहले दीवा को आर्यांश कपूर दुनिया का सबसे बुरे इंसान लग रहा था, तो फिलहाल अब उसे रक्षित सबसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान लग रहा था। दीवा जैसे ही अपने घर पहुंची तो उसने देखा वहां पुलिस आई हुई थी और उसके डैड को पकड़ कर ले जा रही थी। दीवा जल्दी से उनके पास जाकर बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग मेरे पापा को इस तरह पकड़ कर क्यों ले जा रहे हो? पुलिस ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे वहां से ले जाने लगी। दीवा के डैड मिस्टर नवीन गोयंका ने उसकी तरफ देखा और तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, मुझे माफ कर देना, तुम इतने टाइम बाद यहाँ पर आई थी, तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। रक्षित दीवान से बचकर रहना, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हें धोखा देगा। नवीन ने जाते जाते दीवा को आगाह कर दिया था और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी। दीवा को कुछ समझ में नहीं आया। वो दौड़कर अंदर गई तो उसकी मॉन्ग प्रार्थना लिविंग रूम में काउच पर सुन होकर बैठी थी। नवीन के अरेस्ट होने पर प्रार्थना को बड़ा झटका लगा था और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। दीवा जल्दी से उसके पास गई और बोली, मॉम, बाहर क्या चल रहा है? वो लोग पापा को अरेस्ट करके क्यों ले गए हैं? दीवा को ये जरूर पता था कि उनकी कंपनी की हालत सही नहीं लग रही है, लेकिन उसमें पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था।
फिर अचानक पुलिस नवीन को क्यों पकड़ कर ले गई ये देखकर दीवा काफी हैरान थी। दीवा की बात सुनकर प्रार्थना होश में आई और उसके गले लग गई। उसने रोते हुए बताया, किसी अनजान को अपना मानकर भरोसा करते हैं तो यही होता है। तुम्हारे पापा ने कनिष्का को अपनी बेटी की तरह पाला था, लेकिन उसने ही धोखा दिया। कंपनी पर पहले से ही इतना लोन था, ऊपर से ये सब, बोलते हुए प्रार्थना फिर से रो पड़ी। दीवा ने घबराते हुए पूछा, ये सब क्या मॉम, प्लीज मुझे सब बताइए। प्रार्थना ने सुबकते हुए कहा, लोन हम अरेंज कर सकते थे, लेकिन इस बीच कनिष्का ने कुछ पेपर्स में गड़बड़ी की और बहुत से अमाउंट गलत दिखाकर उन पर तुम्हारे पापा के सिग्नेचर ले लिए। पूरे 500 करोड़ इधर उधर हो रहे हैं। उन पर गबन का इल्जाम लगा है और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई थी। प्रार्थना के बताते ही दीवा को भी एक बड़ा झटका लगा। थोड़ी देर पहले ही उसने रक्षित और कनिष्का को साथ में देखा था। वो समझ गई थी कि ये उन दोनों की मिली भगत थी। गुस्से में दीवा के मुंह से निकला, वो इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है। दीवा फिलहाल इस बारे में प्रार्थना को कुछ नहीं बताना चाहती थी कि थोड़ी देर पहले उसने रक्षित और कनिष्का को एक साथ देखा था, लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे थे और वो जोर जोर से रोने लगी। प्रार्थना ने तुरंत उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, हम तुम्हारे पापा को बाहर ले आएंगे। दीवा से अब अपना दुख कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने सुबकते हुए प्रार्थना से कहा, सुबह मैंने रक्षित पर गुस्सा किया था तो उससे बात करने के लिए उसके घर पर गई थी मॉम, वहां पर रक्षित और कनिष्का एक दूसरे के साथ बिस्तर पर। दीवा अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी और फिर से फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि दीवा ने पूरी बात नहीं बताई थी, वो खुद को बेवकूफ समझ रही थी, क्योंकि उसने आंख बंद करके रक्षित और कनिष्का पर भरोसा किया। रक्षित और कनिष्का की सच्चाई सुनकर प्रार्थना को भी गुस्सा आ रहा था और अपनी बेटी दीवा पर दया। वो दोनों सच में बहुत घटिया निकले, प्रार्थना ने गुस्से में कहा। फिलहाल दीवा को रक्षित के धोखे को भूलकर अपने पापा के बारे में सोचना था, तो वो तुरंत उस मोमेंट से बाहर आ गई। उसने प्रार्थना से पूछा, मॉम हमें डैड को बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा।
हमें कम से कम 500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, प्रार्थना ने बताया। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, अगर मैं अपने सारे शेयर्स और बाकी सब चीजें भी बेच दूं तो उनसे तो 100 करोड़ भी नहीं निकलेंगे। 500 करोड़ रुपए वाकई काफी ज्यादा थे और इतने पैसे ना तो प्रार्थना के पास थे और ना ही दीवा के पास। रकम सुनने के बाद दीवा के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए, क्योंकि वो जानती थी कि बिना पैसों के अब उन्हें और नवीन को क्या कुछ सहना पड़ेगा। गबन की गई रकम नहीं चुकाई गई तो नवीन को कड़ी सजा होने वाली थी, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर ये रक्षित की प्लानिंग थी तो फिर जेल में न जाने नवीन को तोड़ने के लिए उन पर कौन से टॉर्चर होने वाले थे। ये सोचकर ही दीवा की रूह कांप रही थी। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था जो उन्हें इन हालातों से निकाल सके। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थीं। अभी तो रक्षित अपने आखिरी दांव के साथ तैयार था, जिसके बाद शायद दीवा और गोयंका फैमिली का बचा कुचा सब दांव पर लगने वाला था। क्या दीवा हेल्प मांगने आर्यांश के पास जाएगी?